एवं इस प्रकार पंचविधां पांच इंद्रिय विषयों लिंगम सूक्ष्म शरीर त्रिवृत्ता तीनों गुणों से प्रभावित षोडश सोलह विस्तृतम फैला हुआ ऐसा यह चेतनया जीव के साथ युक्त जुड़ा हुआ जीव बद्ध जीव इति इस प्रकार अभिधीयते माना जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पांच इंद्रिय विषय, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये सोलह भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोग करते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। आप लोग आवृत्ति करेंगे, पांच इंद्रिय विषय, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये सोलह भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोग करते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 15 अध्याय श्लोक 7 में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध जीव होने से वे मन समेत छह इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते रहते हैं। यहां इसकी भी व्याख्या हुई है कि जीव सोलह भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है और प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होता है। जीव तथा सोलह तत्वों का समुच्चय मिलकर जीव भूत बनाते हैं जो बद्ध जीव हैं और प्रकृति के अंतर्गत कठिन संघर्ष करता है। सबसे पहले समग्र जगत प्रकृति के तीनों गुणों से विक्षुब्ध होता है और जीव की जीवन अवस्थाएं बन जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर विकास करते रहते हैं और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि आवश्यक स्वरूप रहते हैं। यदि अव्यय स्वरूप रहते हैं। श्री माधवाचार्य के अनुसार जब चेतना जो हृदय की जीवनी शक्ति है प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विशुद्ध होती है तब जीव का सूक्ष्म शरीर संभव होता है जो मन इंद्रिय पदार्थों पांच ज्ञानेंद्रियों तथा पांच कर्मेंद्रियों से युक्त होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्रीराधरास बिहारी ललिता विशाखा सखी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीवन स्थूल शरीरों को विकसित करता है और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष शोक भय सुख तथा दुख का अनुभव करता है। पांच इंद्रिय विषय, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोग करते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। इस श्लोक में सूक्ष्म देह और स्थूल देह के साथ बद्ध जीव किस तरह से युक्त होकर कार्य करता है, इसके संदर्भ में उल्लेख मिलता है। एवं पंचविधम लिंगम त्रिविश षोडश विस्तृतम एस चेतनया युक्तो जीव इत्य विधीयते। पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियों के विषय और मन, इसके साथ जीव युक्त होकर के इस शरीर में कार्य करता है। ऐसा चेतनया युक्तो जीव इत्य विधीयते। जब इसके साथ युक्त हो जाता है तो जीव भूत कहलाता है और तीन गुणों से प्रभावित होकर के भिन्न भिन्न कार्य करता है। कभी भी या किसी भी स्थान में, किसी भी देश में या किसी भी ब्रह्मांड में बद्ध जीव बिना देह के कार्य नहीं कर सकता है। देह माध्यम है और देह के द्वारा ही अच्छा बुरा कार्य संपन्न होते हैं और उन कार्यों के अनुसार ही जीव जो है सुख दुख भोगता है बिना देह के। इसलिए भगवान गीता में देह को भी क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रमिति विधीयते, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। इसमें दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा है और गौण क्षेत्रज्ञ उसके नीचे जो क्षेत्रज्ञ है आत्मा है। दोनों को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। एक परमात्मा है, एक आत्मा है, तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के द्वारा वो कार्य संपन्न करता है। बिना क्षेत्र के कार्य नहीं होता है। जैसे संसार में भी किसी को अगर कुछ करना है तो क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। पहले भूमि अधिग्रहित किया जाता है। मंदिर भी बनाना है तो बिना भूमि के, बिना क्षेत्र के आप नहीं बना सकते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले क्षेत्र को अधिग्रहित किया जाता है, इसको एक्वायर किया जाता है, लैंड एक्वायर किया जाता है। चाहे फैक्ट्री लगाना हो या बिल्डिंग बनाना हो, कोई भी कार्य कोई आकाश में नहीं बना सकता है। उसी तरह से जीव बिना क्षेत्र अर्थात बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकता है। पीछे एक श्लोक में पता है कि जीव कभी कभी स्थूल देह से अलग होकर के भी सूक्ष्म देह के साथ कार्य करता है। जैसे स्वप्नावस्था में देखता है कि उड़ रहा है, या ये भी देखता है कि कोई शेर उसको पीछा कर रहा है, वो भागता है या उड़ता है। लेकिन जैसे नींद खुल जाती है तो वास्तविकता में वो न उड़ता है न वो भागता है, वो स्वप्न का विचार है। मन बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म देह के द्वारा वो ऐसा विचार करता है, धरातल में वो कार्य संपन्न नहीं होता है। प्रभुपाद जी पीछे का श्लोक में बोलते हैं कि मन, हम दिन में जो कार्य करते हैं वही स्वप्न में भी मन उसको चिंतन करता है। जैसे कोई दिन में कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाता है तो स्वप्न में भी कभी कभी वो दृश्य आता है, क्योंकि मन वैसा वो चित्र जो है चित्रित करता है। लेकिन कार्य रूप में जब करना हो तो बिना देह के कार्य संपन्न नहीं होते हैं। जैसे आप कभी कभी लोग कपोल कल्पना करते हैं, मन में कल्पना करते हैं कि हम विमान में उड़ रहे हैं। मन से कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम दिल्ली आ गए हैं, लाल किला पर घूम रहे हैं, जागृत अवस्था में भी। तो मन की क्रिया है, लेकिन मन तभी कार्य संपन्न कर सकता है इंद्रियों के संयोग से। इंद्रियों के बिना संयोग के मन कार्य संपन्न नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी मन में इच्छा होती है फिर वो इच्छा मन इंद्रियों में प्रेषित करता है, इंद्रियों में मन इच्छा को उद्वेलित करता है। इंद्रियों को संचालित करता है, प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, तब इंद्रियां मन के संयोग से कार्य संपन्न करती हैं। इसीलिए कोई भी कार्य संपन्न करने से पहले वो कार्य का अच्छा बुरा या करना है नहीं करना है मन में आता है, फिर मन के साथ साथ फिर बुद्धि से उसका विचार किया जाता है। बुद्धि जैसी होगी, अगर सुबुद्धि है या कुबुद्धि है, जैसे पुरंजन के पास कुबुद्धि थी। पुरंजन कौन है? पुरंजन बुद्धि ही है। जब जीव सुबुद्धि के साथ रहता है तो सही कार्य करता है, और कुबुद्धि के संसर्ग में रहता है तो गलत कार्य करता है। तो आत्मा मन जो है बुद्धि के साथ संपर्क करता है। अगर सही सुबुद्धि होती है, सही उसको मार्गदर्शन मिलता है तो सही कार्य करता है, और नहीं गलत अगर बुद्धि का गलत ये होता है अर्थात कुबुद्धि का संसर्ग होता है तो गलत कार्य होता है। तो पंच विधम लिंगम विस्तृतम, किस तरह से विस्तार होता है भौतिक देह का, तो पांच ज्ञानेंद्रियां, और पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय हैं। जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है रस, नाक का विषय है घ्राण, गंध लेना, और स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श करना। जैसे कोई वस्तु के विषय में स्पर्श करना है, गर्म है, ठंडा है, कोमल है, कठोर है, तो हम स्पर्श करते हैं। कोई वस्तु अंधेरे में भी हो तो उसका स्पर्श से आदमी कुछ अनुभव प्राप्त करता है। अग्नि का अनुभव हम कैसे करते हैं? स्पर्श इंद्रियों से। अग्नि में दाहिका शक्ति है तो हम स्पर्श करके समझते हैं। बर्फ में शीतलता है, इसका अनुभव कैसे करते हैं? आंख से नहीं करते हैं, स्पर्श करके करते हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ उसके विषय भी साथ साथ जुड़े रहते हैं। आंख है, देखने की शक्ति नहीं है। कान है, सुनने की शक्ति नहीं है, तो विकसित नहीं माना जाता है। बद्ध जीव को विकसित देह जब मिलता है तो वो प्रॉपर कार्य करती हैं इंद्रियां। कान का काम है सुनना, लेकिन मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, उसमें बोलने की शक्ति नहीं है, या अंधा व्यक्ति है, उसमें देखने की शक्ति नहीं है। इंद्रियां है, लेकिन इंद्रिय का जो विषय है उसके द्वारा वो प्राप्त नहीं है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसको खूब मिरर के सामने खड़ा कर दिया, बड़े बड़ा मिरर के सामने, तो देख नहीं पाएगा, रूप का अनुभव नहीं कर पाएगा, वो मिरर को भी नहीं देख पाएगा, अपने आप को भी नहीं देख पाएगा, उसके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है वो नहीं देख पाता है। लोचनाभ्याम विहीन अस्य दर्पणम किम करिष्यति, जिसके पास अगर नेत्र नहीं है तो आईना उसके लिए क्या क्या करेगा, आईना का कोई महत्व नहीं है। आंख के बिना से हमारे पास दो आंख हैं, एक लोग बोलते हैं प्राग चक्षु, एक चर्म चक्षु, दोनों के संयोग से सही सही ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तव में ज्ञान इंद्रियां जो हमें दिशा प्रदान करती हैं, जो ज्ञान देती हैं, उसमें बुद्धि का भी सहयोग होता है। बुद्धि के सहयोग से तब सही ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए अब रात्रि में चल रहे हैं, तो रात्रि में जा रहे हैं, अंधेरा है और रास्ते में रस्सी है, तो हम आंख से देखते हैं कि सर्प है। आंख से मान लीजिए कि हम देख करके भी उसका सही आकलन नहीं कर पाते हैं, आकलन ये हो गया कि यहां सर्प है, तो उसको सही कैसे विचार किया जाता है? बुद्धि के द्वारा। जब थोड़ा आदमी बुद्धि चलाएगा तो उसका जांच पड़ताल करेगा, टॉर्च होगा, नहीं तो दूर से कुछ पत्थर से ये करेगा कि हाँ वास्तव में है क्या वास्तविकता। आंख से देख लिया कि रस्सी में सर्प बुद्धि मान लिया, रस्सी में उसको सर्प बुद्धि हो गई, लेकिन बुद्धिमान होगा तो ऐसे नहीं मान लेगा, उसको थोड़ा सा और प्रयास करेगा समझने के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति उसमें बुद्धि का प्रयोग करता है, और जो लोग बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं कि वास्तव में सर्प है। जब कोई बुद्धि का प्रयोग करता है तो मान लीजिए उसके पास टॉर्च लाइट है तो टॉर्च से देख लेता है, यानी और कोई भी प्रयोग से वो समझ जाता है कि नहीं सर्प नहीं है, रस्सी है। तो व्यक्ति के हर कार्य में ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ बुद्धि का भी संयोग होता है। उसी तरह कर्म इंद्रियों के साथ भी बुद्धि का संयोग है। बुद्धि सबके साथ युक्त है, इसलिए पुरंजन यहां पुरुष का प्रतीक है और पुरंजनी जो बुद्धि है वो स्त्री की प्रतीक है, लेकिन वो बुद्धि है। तो जब दोनों युक्त होकर के सही दिशा में कार्य करते हैं तो सही कार्य होता है। तो कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जैसे कर्म इंद्रियों से कोई हाथ से कार्य कर रहा है, कोई हाथ से मान लीजिए मशीन ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बुद्धि का संतुलन नहीं है कर्म इंद्रियों के साथ। तो बुद्धि का जैसे ही संतुलन बिगड़ जाता है दुर्घटना हो जाती है। मान लीजिए कोई ड्राइवर है, कार चला रहा है हाईवे पर, तो कर्म इंद्रियों के साथ साथ बुद्धि दोनों को संतुलित करके चलता है, और थोड़ी सी असावधानी होती है तो लोग बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी थोड़ा सा आप ये करते हैं, असावधानी पूर्वक चलाते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। तो कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां दोनों के साथ बुद्धि का समावेश जब होता है तब सही दिशा में कार्य होता है। तो संपूर्ण देह विकसित तब होता है, जैसे प्रभुपाद जी पीछे के श्लोक में लिखते हैं कि बालक जब मां के जब गर्भ शिशु होता है तो उसमें इंद्रियां पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, और इंद्रियों का एक दूसरे का संतुलन नहीं रहता है। गर्भ शिशु को हर इंद्रियों से संतुलन पूर्ण रूप से नहीं होता है, बुद्धि का एक दूसरे के साथ संतुलन नहीं होता है। कुछ समय के बाद जब चेतना हो जाती है, गर्भ शिशु को 5 महीने के बाद, आज के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि 5 महीने के बाद चेतना हो जाती है, गर्भ शिशु वहां कुछ समझने लगता है, कुछ अनुभव करने लगता है। 7 महीने में वो सुनने लगता है मां के गर्भ में भी, जैसे प्रहलाद महाराज मां के गर्भ में नारद जी के उपदेश को सुन लिए थे, परीक्षित महाराज भगवान को गर्भ में ही देख लिए थे। 7 महीने में वहां इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, सुनने समझने देखने की शक्ति अर्थात हो जाती है, इंद्रियों का आपस में समुच्चय सहयोग हो जाता है। हर इंद्रियां अलग अलग डायरेक्शन में कार्य करती हैं, जैसे आंख का काम है देखना, कान जो है सुनने का कार्य करता है। जैसे आप देख रहे हैं लेकिन कहीं से शब्द आपको सुनाई पड़ता है सांप, तब भयभीत हो जाते हैं, या आप जा रहे हैं सामने कोई अब बड़ा, अब कार से जा रहे हैं सामने एक बड़ा टूटा हुआ ओवर ब्रिज देखते हैं तो तुरंत सावधान हो जाते हैं। जैसे इंद्रियों हम देखते हैं तो कर्म इंद्रियां भी उसके अनुसार कार्य करती हैं। कोई भयंकर दृश्य देखता है सामने तो रुक जाता है, मतलब तो एक दूसरे के साथ सहयोग है, आंख और पैर के साथ सहयोग। पैर चल रहा है लेकिन पैर देख नहीं सकता है, हाथ कार्य कर सकते लेकिन देख नहीं सकता है। हाथ कैसे कार्य कर रहा है, एक बार तो आंख है नहीं, आंख के सहयोग से दोनों का सहयोग है। जैसे आप कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य जब समाप्ति होता है तो उसको कैसे, हाथ को कैसे ज्ञान होता है, बुद्धि और आंख के द्वारा। ज्ञान चक्षु चर्म चक्षु के द्वारा हाथ को ये होता है कि नहीं अब एक कार्य संपन्न हो। आप पेपर में लिखते हैं, पेपर जब पूरा हो जाता है तो हाथ को अज्ञात नहीं है, या चल रहे हैं आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं लेकिन पैर को अज्ञान नहीं है, पैर तो देखने उसका केवल चलना कार्य है, लेकिन आंख के द्वारा उसको सहयोग किया जाता है।
पैर केवल चलता है, लेकिन अगले स्टेप में क्या है, आंख के द्वारा उसको अनुभव कराया जाता है। जैसे कैसे सहयोग है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का कैसे सहयोग है, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे एक अंधा आदमी है और एक लंगड़ा आदमी है, हमारी इंद्रियां भी वैसे ही हैं। पैर अंधा है, हाथ अंधा है, एक अंधा आदमी और लंगड़ा आदमी दोनों कैसे सहयोग करते हैं। एक गांव में दो आदमी रहते थे, गांव में बहुत आदमी रहते हैं, लेकिन एक अंधा भी था और एक लंगड़ा भी था। अब गांव में भयंकर आग लग गई। दृष्टांत, दृष्टांत समझने के लिए कहा जाता है, उसका हूबहू अर्थ नहीं निकाला जाता है। जैसे कोई कह दे कि आप बहुत आप गधा हो। एक बार राघवेंद्र महाराज कथा कर रहे थे ऑडिटोरियम में, तो एक आदमी कुछ प्रश्न किया तो महाराज बोले कि कुछ चीज उदाहरण दिया जाता है समझने के लिए, उसका हूबहू उसका लिटररी अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि अरे ये तो गधा है। जैसे एक आदमी कहा कि ये गधा है, तो कोई उसको देखने लगे कि इसका चार पैर है, इसका पूंछ किधर है, तो उसका कुछ और अर्थ होता है। गधा कहने मतलब कि लोग बोलते हैं कि कम बुद्धि वाला है, लेकिन हूबहू अर्थ निकालिएगा तो आदमी देखेगा कि गधे को चार पैर होता है, पूंछ होता है, तो उसका ये हुआ उसका लिटररी अर्थ निकालना। तो दो आदमी रहते थे, एक अंधा था और एक लंगड़ा था। गांव में आग लग गई, भयंकर आग लगी, सब भाग गए। जब गांव में कुछ होता है तो सब लोग भागते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग गांव में देखते हैं कि डाकू आ गए तो सब लोग भागते हैं, किसी को सहयोग नहीं करते हैं, पहले अपनी रक्षा करो, भागते हैं लोग। या किसी के घर में आग लग गई तो घर वाले भागते हैं, पहले अपने जान बचाओ। भागने के बाद तब विचार करते हैं कि और क्या रह गया है घर में। तो गांव में सब लोग भाग गए, दो बेचारा अंधा किधर जाएगा, आग किधर है, किस दिशा में जाना है, और एक लंगड़ा है वो चल नहीं सकता है। तो दोनों आपस में सहयोग किए कि देखो मैं देख सकता हूं लेकिन चल नहीं सकता हूं, तुम चल सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो, पैर चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता है, उसको सहयोग लेना पड़ता है। तो दोनों आदमी में सहयोग हुआ तो अंधा व्यक्ति ने कहा कि तुम हमारे सिर पर चढ़ जाओ, तुम हमारे सोल्जर पर चढ़ जाओ और तुम मार्गदर्शन करो, मैं चलता रहूंगा। तो दोनों के सहयोग से, इसको कोऑपरेशन बोलते हैं, सहयोग। अंधा व्यक्ति उसको अपने सिर पर चढ़ा लिया, अपने कंधे पर चढ़ा लिया, और आंख वाला उसको मार्गदर्शन करते गया। दोनों जो है उस महान संकट से निकल गए। अगर दोनों अलग अलग प्रयास करते, दोनों में सहयोग नहीं होता तो दोनों मर जाते जलकर। उसी तरह हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि जब सहयोग से कार्य करती हैं तो जीव महान संकट से मुक्त हो जाता है। और जब अलग अलग अपने अपने दिशा में कार्य करती हैं इंद्रियां, आपस में सहयोग नहीं होता है, बुद्धि का समावेश नहीं होता है, तो बद्ध जीवन में ही पड़े रहते हैं। यहां ये उदाहरण है। जब भी जैसे मंदिर है, इसमें भी ईंट का, सीमेंट का, छड़ का, सबका सहयोग है, सहयोग से मंदिर खड़ा हुआ है। अगर ये सहयोग ना हो तो मंदिर का रूप नहीं बन सकता है। उसी तरह हमारा देह कब बनता है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और तन मात्रा, रूप रस गंध स्पर्श और मन बुद्धि अहंकार, मन के द्वारा, ये 16 भौतिक तत्व हैं। पांच ज्ञान इंद्रिय आप लोग जानते ही हैं, कर्म इंद्रियां हाथ पैर मुंह मल द्वार और मूत्र द्वार, यही है ना, इसको कर्म इंद्रियां बोलते हैं। और ज्ञान इंद्रियां में आंख है कान है। ज्ञान इंद्रियां इसमें चार हैं, जिह्वा है नाक है आंख है कान, सब एक जगह ही है। सबका साथ साथ सहयोग है। स्पर्श इंद्रियां भी है, अगर यहां कोई आपको गर्म लोहा ऐसे टच करता है तो तुरंत ये होता है। स्पर्श इंद्रियों में कहीं भी कुछ होता है तुरंत ये होता है। आपके पैर में स्पर्श इंद्रियों का भी बहुत सहयोग है बुद्धि के साथ, और बुद्धि का स्पर्श इंद्रियों के साथ सहयोग है, इसी को समुच्चय भी बोलते हैं। जब आपके पैर में कांटा चुभता है तो कैसे ज्ञान होता है? स्पर्श इंद्रियों से ही ज्ञान होता है सुख और दुख का। तो बुद्धि तुरंत क्या करती है, हाथ को भेजती है। बुद्धि कर्म इंद्रिय हाथ कर्म इंद्रिय को वहां तुरंत हाथ वहां आता है और उसको सहयोग करता है। कोई अगर किसी को सिर पर मान लीजिए लाठी मारता है तो पहले कौन जाता है? हाथ जाता है, पहले हाथ ऊपर जाता है सहयोग करने के लिए। तो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां और इसके विषय, ज्ञान इंद्रियों के विषय और मन, ये भौतिक शरीर को कहते हैं। इसमें जीव जो है कार्य करता है और उस कार्य के अनुसार सुख दुख का भोग करता है। तो बद्ध जीवन में ये जो आत्मा का ये जो संसर्ग हो गया है भौतिक देह से, इसको वो कैसे छोड़ सकता है, इससे कैसे मुक्त हो सकता है, ये बताने का अर्थ है। इसमें जीव अनादिकाल से कार्य कर रहा है, अनादिकाल से बद्ध जीवन में है, अनादिर बहिर्मुख जीव। भगवान से बहिर्मुख जीव होता है तो उसको भौतिक देह में संतप्त कराया जाता है। ये भौतिक देह में जीव को दुख दिया जाता है, माया भौतिक देह के द्वारा दुख देती है। और जब उसे ज्ञान हो जाता है कि ये देह ही दुख का कारण है, देह ही दुख का कारण है, इस भौतिक देह से जब कोई मुक्त हो जाता है तो मायावादी लोग निर्विशेषवादी लोग इसको निर्वाण बोलते हैं, या उसके नीचे जो योगी लोग हैं बोलते हैं मुक्त हो गया, मुक्ति अवस्था। और जो भक्त हैं इस देह से जब मुक्त हो जाते हैं तो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, या आत्मा का साक्षात्कार करते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। भगवत साक्षात्कार, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। और जो पूर्ण ज्ञानी होता है इस देह में ही वो मुक्त हो जाता है, कि देह में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है, देह के बंधन से मुक्त हो जाता है, देह में रहते हुए भी देह के आसक्ति से देह के क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। श्लोक आया कि देह में कार्य करते हुए भी, देह में रहते हुए भी जो भक्त हैं देह से परे हो जाते हैं। श्लोक में भूल रहा हूं, जीवन मुक्त सउच्यते, जो ऊपर कलाइन की थे, जीवन मुक्त सउच्यते, उससे भौतिक जीवन से वो मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति अवस्था में रहते हैं। इसलिए भक्त लोग मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, मुक्ति उनके पीछे पीछे घूमती है। मुक्ति मुक्तांजलि करबद्ध हाथ जोड़ करके भक्तों के पीछे जाती है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि जाती है। क्यों? ये भुक्ति मुक्ति सीधी ये जो ये भी एक प्राकृत है, ये भी भौतिक है। जो भौतिक मुक्ति है, जो निर्विशेषवादी लोग जिसे मुक्ति कहते हैं, ये भी भौतिक है। ब्रह्म ज्योति तक जो मुक्ति प्रदान करता है, ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना चाहता है, ये भी भौतिक है। तो ऐसे भौतिक मुक्ति के संदर्भ में भक्त लोग बहुत सावधान रहते हैं, वैसी मुक्ति कामना नहीं करते हैं। गौड़ीय दर्शन के अनुसार मुक्ति का वास्तविक अर्थ होता है जीव को अपना ज्ञान हो जाना, स्वयं का ज्ञान होना कि मैं कौन हूं और मेरा संबंध किसे है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं, ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करशति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध जीव होने से वे मन समेत छह इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते रहते हैं। मन समेत छह इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते हैं। तो जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है तत्वतः का अर्थ होता है व्यवहारिक रूप में भी। ऐसे तो हम लोग सुनते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम लोगों को तत्वतः ज्ञान नहीं कि हम भगवान के अंश हैं। कैसे भगवान, जब अंश हैं तो भगवान का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? जैसे अंगुली हमारे शरीर का अंग है, इसका अनुभव होता है कि हमारे हाथ से जुड़ा हुआ है। हाथ भी ये शरीर का अंग है, हमें अनुभव होता है कि हाथ यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। हाथ को हम संचलित भी करते हैं, इसका हमें ज्ञान है। लेकिन हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं है। हमारा कनेक्शन कैसे है, इसका बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हाथ हमारे देह का अंग है तो हमें अनुभव होता है, हम इसके द्वारा कार्य करते हैं। और इसको जब काट करके अलग कर दिया जाता है तो उसका भी अनुभव होता है। जैसे किसी का सर्जरी करके हाथ अलग कर दिया जाता है तो देखता है कि मेरा हाथ सामने पड़ा हुआ है। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, लेकिन इसका अनुभव हमें नहीं है। लेकिन हम केवल सुन रहे हैं अभी। हाँ, मैं आप जो भी हैं केवल सुन रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन कैसे हैं इसका अनुभव नहीं है। या हैं भगवान के अंश तो हम जरूर जुड़े होंगे, वास्तव में हम जुड़े हैं, लेकिन कैसे जुड़े हैं ये भी अनुभव नहीं है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको जान लेना, जब यह कोई जान लेता है कि हम भगवान के अंश हैं व्यवहारिक रूप में, तो जान जाता है, सब कुछ जान जाता है। ये जानने के बाद और कोई अनभिज्ञ नहीं रह जाता है, सब विज्ञ हो जाता है। भगवान को या भगवान के साथ संबंध को कोई जान जाता है व्यवहारिक रूप में, तो उसके लिए कोई चीज अधूरा नहीं रह जाता, सब कुछ जान जाता है। जैसे सूर्य के रात्रि में हमको अनुभव नहीं होता है, कोई अनभिज्ञ जगह में हम लोग जाते हैं तो, कोई दूसरे शहर में आप चले गए रात्रि में तो आपको अनुभव नहीं रहता है, लेकिन सुबह होने पर आपको अनुभव होने लगता है। तो जब किसी को व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम सविज्ञानम, सविज्ञानम को ही तत्वतः कहा जाता है। जब कोई जान जाता है तो उसको उसी को वास्तविक मुक्ति बोलते हैं, वो जान जाता है। लेकिन हम लोग अभी केवल सुन रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं कि H2O जल बनता है, प्रयोगशाला में लोग जल बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो कोई भी सुन लेता है। लेकिन सुनना ही पर्याप्त नहीं है, हम लोग पढ़ते थे तो सूत्र भी फॉर्मूला भी याद करते थे, H2O याद कर लिए थे, लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग नहीं किए थे कभी। हाई स्कूल में प्रैक्टिकल होता था लेकिन हम लोगों के समय में नहीं होता था। तो एक बार एक लड़का बोला कि H2O हम कैसे मानेंगे क्लास में। हम लोग क्लास में एक लड़का बोला कि इसका तो प्रैक्टिकल तो हम लोग सीखे नहीं, केवल तोते की तरह H2O हम लोग करते हैं। तो हम लोग तोते की तरह केवल बोलते हैं हम ममई वांसो जीव लोक के जीव भूत सनातन, लेकिन इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव कैसे होगा? एक प्रमाणिक आचार्य के मार्गदर्शन में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे तो हो सकता है। एक बार श्राद्ध प्रभु बता रहे थे कि गीता हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ करके तो हम लोग इसको समझ जाते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो बोले कोई अश्लोक मुझे याद नहीं, अश्लोक उद्धृत करके बता रहे थे, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। बोले ये श्लोक को समझने के लिए केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक प्रमाणी गुरु के अंदर में, एक प्रमाणी गुरु के अध्यक्षता में जब कोई इस ज्ञान को सीखता है, ये गुह्य ज्ञान है। हम सोचते हैं कि हम सब पढ़ लिए हैं, हम सब समझ गए, लेकिन नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा कैसे ब्रह्मभूत होता है आदमी? ब्रह्मभूत का क्या लक्षण है? अब ब्रह्मभूत कोई हो जाता है तो उसका क्या पहचान है? तो इसके पीछे और भी कुछ चीजें हैं। तो बता रहे थे कि इसको कोई कौन बता सकता है? जो भगवान का कोई बहुत शुद्ध भक्त होगा और प्रमाणिक गुरु होगा वही इसको आपको अक्षरशः बता सकता है और समझा सकता है। तब उसको पूर्ण ज्ञान माना जाता है। और उस अवस्था में तब जीव इस देह में रहते हुए भी, इंद्रियों में रहते हुए भी, कार्य करते हुए इससे मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। समय समाप्त हो गया है, यही हम विश्राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।